ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंध आठवां अध्याय, महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 11-19। माया जवनिका आच्छन्नम् अज्ञा अधोक्षजम् अव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटः नाट्यधरः यथा। माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् जवनिकाच्छन्नम् यादोक्षजमव्ययम् शसे मूढदृशाः त्याधरो यथा। ठगने वाली जवनिका पर्दा आच्छन्नम ढका अज्ञा अज्ञानी अधोक्षजम भौतिक बोध की सीमा से परे दिव्य अव्ययम अविनाशी न नहीं लक्ष्य से दिखता है मूढ़ दृशा मूर्ख देखने वाले के द्वारा नटह कलाकार नाट्य धरह अभिनेता का भेष धारण किए यथा जिस प्रकार। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साक्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हमने आशा नहीं की थी कि सुबह भी इतने भक्त यहाँ उपस्थित होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ देखकर मंदिर में श्रीमद् भागवत पाठ के लिए। शिक्षाष्टकम प्रभु ने मुझसे निवेदन किया था कि कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के ऊपर हम कुछ कहें। वैसे एक प्रवचन में पूरी प्रार्थना की चर्चा करना तो संभव नहीं है, फिर भी एक श्लोक मैंने चुना है उसके ऊपर कुछ कहना चाहूँगा। साथ साथ कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के लिए एक संक्षेप में पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड दूंगा। कुंती महारानी का नाम तो आप सबने अवश्य सुना है, पांडवों की माता हैं। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में यह प्रसंग आता है। तो पहले स्कंद में पृष्ठभूमि इस प्रकार से है कि नैमिषारण्य में स्थित जो ऋषिगण हैं वो सूत गोस्वामी से निवेदन कर रहे हैं कि वो उन्हें श्रीमद् भागवत सुनाए, जो कि सूत गोस्वामी ने शुकदेव गोस्वामी जी सुनी थी, जबकि शुकदेव गोस्वामी ने ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी। और उस सभा में अनेक ऋषि मुनि जगह जगह से आए हुए थे, बल्कि ब्रह्मांड भर से आए हुए थे। और बातों बातों में फिर ये ऋषिगण जानना चाहते थे कि ये भागवत की रचना कैसे हुई, किन्होंने की, क्यों की, कहाँ की इत्यादि। और फिर शुकदेव गोस्वामी की चर्चा हुई। व्यास देव जी ने ये रचना करने के बाद शुकदेव गोस्वामी को पढ़ाया सिखाया। शुकदेव गोस्वामी ने अपने पिता या अपने गुरु व्यास देव के पास से श्रीमद् भागवत ग्रंथ सुना। व्यास देव जी के गुरु थे नारद मुनि। नारद मुनि वहां पधारे थे शम्याप्राश में, जो कि सरस्वती नदी के तट के ऊपर व्यास देव जी का आश्रम है। व्यास देव जी कुछ व्याकुल से थे, यद्यपि उन्होंने इतने सारे शास्त्रों की रचना की थी, फिर भी उनके मन में चैन नहीं आ रहा था। तो नारद जी ने आके उनके संशय का निवारण किया और बताया, क्योंकि आपने कृष्ण लीला का पर्याप्त मात्रा में वर्णन नहीं किया। यद्यपि कृष्ण का वर्णन अवश्य अनेक ग्रंथों में है, पुराणों में है, इतिहासों में है, उपनिषदों में है, परंतु इतने प्रत्यक्ष रूप से सार रूप में या ऐसे कृष्ण का वर्णन नहीं है। जगह जगह कृष्ण तो एक केवल ऐसे एक पात्र हैं, जैसे महाभारत में। हालांकि महाभारत में सबसे प्रमुख पात्र श्री कृष्ण हैं, परंतु अनेकों की धारणाएं भिन्न भिन्न रहती हैं। कोई कहते हैं कि मेरा मत तो ऐसे है कि कर्ण सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली पात्र हैं इस महाभारत में। कोई कहते नहीं नहीं भीष्म देव हैं, तो कोई कहते नहीं अर्जुन है, कोई सबके अलग अलग मत रहते हैं। परंतु महाभारत में व्यास देव जी के अनुसार ही श्री कृष्ण सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो ये सब लोगों को इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि महाभारत में इतने सारे और वर्णन हैं, इतने सारे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली योद्धाओं के और व्यक्तियों का वर्णन है कि श्री कृष्ण उनमें से एक पात्र ऐसे प्रतीत होते हैं। परंतु नारद जी कहना चाहते थे व्यासदेव जी से कि आप ऐसे वर्णन कीजिए जिसमें कृष्ण और केवल कृष्ण होंगे, ताकि किसी व्यक्ति को भी संशय कभी न हो कि परम सत्य कौन है और किन के ऊपर हमें ध्यान करना चाहिए, कौन हमारे प्रेम के पात्र होने चाहिए। तब श्रील व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और नारद जी फिर वहां से चले गए। व्यासदेव जी अपने भागवत की रचना करने बैठ गए। नारद जी की कृपा से उन्हें सब कुछ पता चल गया कि जैसे जैसे घटनाएं हुई हैं, मान लीजिए आंखों देखा हाल हो रहा है। वाल्मीकि जी ने भी रामायण की रचना ऐसे ही की थी। वाल्मीकि जी के सामने श्री राम लीला जो है ऐसे प्रकट हुई कि मानो उनके आंखों के सामने हो रही है, और हो रही थी क्योंकि अंदर की आत्मा दिव्य चक्षु के सामने ये सारी लीलाएं प्रकट हो रही थी। तो ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये सत्य है। इसी तरह व्यास देव जी के साथ भी हुआ। तो फिर आगे चल के शुकदेव गोस्वामी ने, जो कि आत्म साक्षात्कार पुरुष थे जन्म से ही, उन्हें श्रीमद् भागवत पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, उन्होंने क्यों पढ़ी, कैसे पढ़ी, इसकी चर्चा हुई। और फिर राजा परीक्षित की बात आई कि राजा परीक्षित ने के साथ ऐसे क्यों हुआ, उनको श्राप क्यों लगा। फिर सूत गोस्वामी कहते हैं ठीक है, तो अब मैं श्रीमद् भागवत आपको सुनाने जाऊंगा। फिर उन्होंने महाभारत से प्रारंभ किया। वैसे देखा जाए तो श्रीमद् भागवत का ये परिचय है पहला स्कंध। हालांकि श्रीमद् भागवत का अंश तो है ही, ये भी श्रीमद् भागवत ही है, फिर भी ये परिचय है। दूसरे स्कंद के प्रारंभ से वास्तव में शुकदेव गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं। तब तक ये एक बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है सारे श्रीमद् भागवत के लिए। तो सूत गोस्वामी फिर बताते हैं कि महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध में किस प्रकार पांडवों की जीत हुई और कौरव, यहां तक कि दुर्योधन भी सारे मारे गए, केवल अश्वत्थामा इत्यादि रह गए, गिने चुने कृतवर्म कृपाचार्य इत्यादि रह गए। और अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया था, तो अश्वत्थामा ने रात में ही द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, साथ साथ सोए हुए योद्धा धृष्टद्युम्न आदि की भी हत्या कर दी, जो कि क्षत्रिय के नियमों के बिल्कुल विरुद्ध होता है। अर्जुन ने पीछा किया, गिरफ्तार किया अश्वत्थामा को, तो द्रौपदी देवी की करुणा के कारण जान से नहीं मार डाला अर्जुन ने। यद्यपि श्री कृष्ण भीमसेन की इच्छा थी कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी इसके अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं है, तो इसकी हत्या करनी चाहिए। श्री कृष्ण ऐसे कह रहे थे, भीमसेन भी कह रहे थे, परंतु युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव इस बात से सहमत नहीं थे। नहीं नहीं, ये हमारे गुरु के पुत्र हैं, तो कैसे इनकी हत्या कर सकते हैं। द्रौपदी देवी की का हृदय करुणा से भर आया कि हालांकि उनके 5 पुत्रों की हत्या की थी, अभी अभी की थी अश्वत्थामा ने, आश्चर्यजनक करुणा है ये। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं चाहती कि अश्वत्थामा की जो माता है उनकी दशा मेरी जैसी हो जाए, अश्वत्थामा भी नहीं रहे तो इन्हें छोड़ दीजिए। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा के सर से जो एक मणि थी, एक रत्न था, और जो बाल था वो निकाल दिया, और इस तरह से उसे मारा भी और नहीं भी मारा। और फिर इसके बाद भी अश्वत्थामा रुका नहीं, आगे चल के जब अंतिम क्रियाएं वगैरह पांडवों ने कर ली, फिर से एक बार अश्वत्थामा ने प्रहार किया, इस बार ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अश्वत्थामा को पता था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बच्चा है जो कि पांडवों का अंतिम वंशज है। वो चाहता था कि सारे वंश को खत्म किया जाए, इतना क्रोध आया था अश्वत्थामा को। तो जब उत्तरा ने देखा, अर्जुन ने भी देखा, ये क्या चीज है, इतनी रोशनी, और ये क्या आ रही, ऐसे मानो कि सारे ब्रह्मांड के अंत का समय आ चुका है। तो दौड़ते हुए उत्तरा श्री कृष्ण के पास आए, क्योंकि श्री कृष्ण तो उनके रक्षक थे पांडवों के। तो श्री कृष्ण तुरंत जान गए कि ये भी अश्वत्थामा ने किया हुआ है, अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया श्री कृष्ण ने। और बालक उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था उसकी रक्षा कर दी। उधर श्री कृष्ण के आदेशानुसार अर्जुन ने भी एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए और उधर बड़ा विध्वंस हुआ, परंतु किसी की हत्या नहीं हुई। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को छोड़ना जानते थे परंतु उसको वापस लेना नहीं जानते थे। अर्जुन में ये कला थी, तो अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को फिर वापस भी कर लिया। तो इस घटना के बाद अब कुंती महारानी बहुत ही विचलित हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि अब श्री कृष्ण ने उन सबकी रक्षा करने के बाद अब वो निकल के जा रहे हैं द्वारका की ओर, अपने रथ में सवार हुए हैं। तो कुंती महारानी सोचा कि श्री कृष्ण हमें छोड़ के जाने वाले हैं। कुंती महारानी श्री कृष्ण की श्रेष्ठ भक्त हैं, वो परम वैष्णवी हैं, तो भक्त ये कभी नहीं चाहते कि श्री कृष्ण के संग से वो वंचित रह जाएं। इसलिए हालांकि हम वैष्णव आचार्यों के तिरुभाव की चर्चा बहुत विस्तार में करते हैं, आविर्भाव की भी करते हैं, परंतु तिरुभाव जो वैष्णव आचार्यों का होता है वो अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जब तिरुभाव का समय आता है तब तक सारी दुनिया पहचान चुकी होती है उस वैष्णव को कि यह व्यक्ति कितने महान थे। जन्म के समय सबको पता नहीं होता कि आगे चल के ये क्या करने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि अपने तिरुभाव के समय वो अब गोलोक वृंदावन वापस जाने वाले हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसा है कि आविर्भाव के बारे में हम बहुत सुनना चाहते हैं, लेकिन तिरुभाव के बारे में सुनना भक्तों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे संग से दूर चले गए तो भक्तों को अच्छा नहीं लगता। हालांकि सुनते हैं क्योंकि तत्व की बातें हैं, श्रीमद् भागवत में इसकी चर्चा है। तो श्री कृष्ण का तिरुभाव होना था, अर्थात अप्राकट्य होना था हस्तिनापुर से, इंद्रप्रस्थ से, और कुंती महारानी नहीं चाहती थी। तो कुंती महारानी सीधे आई कृष्ण के पास और ये सुंदर स्तुति या प्रार्थना करने लगे। ऐसे श्रीमद् भागवत में अनेक सुंदर स्तुतियां हैं, और जैसे कल शाम को हम बता रहे थे कि इन स्तुतियों का पाठ करना, स्तोत्रों का पाठ करना हमारे लिए भक्ति वर्धक है, ये हमारे साधना का एक अंग बनना चाहिए। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने प्रातः काल के कार्यक्रम में इनमें से कई स्तुतियों का या पाठ करने का एक नियम बनाया था, जैसे शिक्षाष्टकम इत्यादि हम प्रार्थना हम पाठ करते हैं। कई मंदिरों में जो अनेक प्रार्थना जैसे ब्रह्म संहिता गाते हैं, या तो फिर रथ यात्रा के समय जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं, या राधाष्टमी के पहले फिर राधिकाष्टकम गाते हैं। ऐसे अनेक जो प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियां हैं, उनको गाने का अभ्यास हमें करना चाहिए। तो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं बहुत सुंदर हैं, रसमय हैं, भक्ति से भरे हुए हैं, इसलिए हमें इनको पढ़ना आवश्यक है, इनको समझना भी आवश्यक है। कुंती महारानी वसुदेव की बहन थी, वैसे तो राजा शूरसेन की पुत्री थी जैसे वसुदेव थे, परंतु राजा शूरसेन ने उनको कुंती भोज महाराज के निवेदन पर दत्त दे दिया था, इसलिए वो कुंती भोज महाराज की पुत्री बन गई और इसलिए उनका नाम हुआ कुंती। वैसे पहले नाम था प्रिथा, तो प्रिथा या कुंती एक ही हैं, पांडवों की माता। तो उनके तीन पुत्र हुए और माद्री के द्वारा दो हुए, नकुल और सहदेव। कुंती महारानी वात्सल्य भाव में श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, वो अच्छे ढंग से जानती थी कि श्री कृष्ण केवल उनके भाई के पुत्र न होकर वास्तव में परम सत्य है, और इनकी प्रार्थनाओं से यह स्पष्ट होता है। वैसे महाभारत में वर्णन है कि जब श्री कृष्ण मथुरा में रहते थे तो श्री कृष्ण की आयु उस समय लगभग 11-12 की हुई होगी, वो वृंदावन से बस आए ही थे मथुरा में, वृंदावन छोड़ा तो वृंदावन से मथुरा वो आए लगभग 10.5 वर्षों की आयु पर, और उसके थोड़े समय बाद ही ऐसे भागवत में और महाभारत दोनों में वर्णन है कि श्री कृष्ण खबर लेते रहे पांडवों की, कुंती महारानी की भी, कि धृतराष्ट्र के द्वारा और कौरवों के द्वारा पांडवों को बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं मेरे प्रिय भाइयों के प्रति, मेरे प्रिय भक्तों के प्रति। तो उन्होंने अक्रूर जी को भेजा था खबर लेने के लिए कि मेरे प्रिय भक्तों की दशा क्या है। तो अक्रूर जी वहां पहुंचे, कुंती महारानी से भी मिले। उस समय कुंती महारानी भी प्रार्थना करने लगी कि हे अक्रूर जी, क्या हमारे पिता, हमारे भाई हम सबको भूल चुके हैं, हमारे परिवार के सदस्य हमें भूल चुके हैं, पिता तो थे नहीं उस समय, भाई वसुदेव इत्यादि, और क्या श्री कृष्ण जो हमारी रक्षा करने में सक्षम हैं, क्या वो भी हमें भूल चुके, यहाँ इतनी कठिनाइयों से हम लोग गुजर रहे हैं, तो क्या इस समय वो हमारी सहायता नहीं करेंगे, हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। तो कुंती महारानी को सांत्वना दी अक्रूर जी ने। तो उस समय से कुंती महारानी को पता था कि श्री कृष्ण परम सत्य है। ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण परम सत्य है केवल महाभारत के युद्ध के समय या भगवद गीता के बाद ही उनको पता चला, कुंती महारानी को पहले से पता था। और यहां भी इन प्रार्थनाओं में ये स्पष्ट होता है ये कि कुंती महारानी सबसे पहले श्लोक में ही वो घोषणा करती हैं, नमस्य पुरुषम त्वाद्यम। नमस्य, मैं नमन करती हूं, पुरुषम त्वाद्यम, तू आद्यम, आदि पुरुष आप हैं। तो शुरुआत, अपने प्रार्थना की शुरुआत से ही वो उनको आदि पुरुष कह के संबोधित करती है, नमस्य पुरुषम त्वाद्यम, प्रकृतः पुरुष परम, और वास्तव में आप परम पुरुष हैं, प्रकृति आपके अधीन है। तो कुंती महारानी एक महिला हैं, वो किसी उस समय में ऐसे प्रथा थी कि महिलाएं जो हैं, बच्चियां जो, वो लड़कियां हैं, वो कभी गुरुकुल में नहीं जाती थी, लड़के जाया करते थे। 5 साल की आयु से 25 साल की आयु में गुरुकुल में लड़के जाया करते थे, लड़कियों को नहीं भेजा जाता था, लड़कियों को घर में ही पढ़ाया जाता था, अच्छे संस्कार दिए जाते थे और जो आवश्यक है उनको सब अच्छी तरह से पढ़ाया जाता था। परंतु इतना होने पर भी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि उस जमाने की लड़कियां भी अज्ञानी हुआ करती थी, अनपढ़ हुआ करती थी, ऐसे नहीं है। कुंती महारानी हालांकि ऐसे कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि वो किसी विश्वविद्यालय में ले जाकर पीएचडी की डिग्री उन्होंने प्राप्त की, ऐसे तो कोई कहीं नहीं जानकारी दी गई है, परंतु जिस ज्ञान को व्यक्त यहां वो कर रही हैं, वो अनेकों बड़े बड़े पीएचडी डिग्री स्वीकार करने वाले लोगों से भी श्रेष्ठ ज्ञान यहाँ है। जो बड़े बड़े पीएचडी वाले भी होते हैं उनको बिल्कुल श्रद्धा नहीं होती, ये ज्ञान नहीं होती, ये समझ नहीं होता जो कि कुंती महारानी को था। जब श्रील प्रभुपाद जी रूस देश में गए थे तो एक व्यक्ति से मिले जो विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, पीएचडी डिग्री उनकी थी, डॉक्टर थे वो पीएचडी, और उनका विषय था भारतीय संस्कृति, और वो उन्होंने गीता आदि सब पढ़ा हुआ था, समझा नहीं था, पढ़ा था, क्योंकि गलत निष्कर्ष पर आए थे, उनके हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं थी। हालांकि इंडोलॉजी के प्रोफेसर थे, भारतीय संस्कृति के प्रोफेसर थे, और गीता उपनिषद सारे पढ़े हुए थे, लेकिन प्रभुपाद जी से वो तर्क कर रहे थे कि मैं विश्वास नहीं करता कि पुनर्जन्म है। तो प्रभुपाद जी सोचने लगे कि देखिए, इतनी बड़ी डिग्री इन्होंने प्राप्त कर ली, परंतु उनको इस बात की श्रद्धा नहीं है जो कि एक अनपढ़ किसान को भारत में है। एक अनपढ़ किसान भी गांव में रह के कहेगा ये मेरे पूर्व जन्मों का फल है कि मुझे ऐसे दुख मिल रहा है। ये इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे जो तथा कथित विद्वान हैं, इनको भी ये सब नहीं पता। तो आगे चल के, और भक्ति की बात तो दूर है, भक्ति तो ज्ञान की पूर्णता है, अनेक जन्मों तक ज्ञानार्जन करने के बाद विरला ही ऐसे कोई व्यक्ति मिलता है जो भगवान के शरण में आकर उनकी प्रेममयी सेवा करता है। तो यदि कोई भगवान की श्रद्धा से सेवा कर रहा है तो हमें जानना चाहिए कि पूर्व जन्मों में उसने सारा जो भी ज्ञान है वो प्राप्त कर लिया है। तो कुंती महारानी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण महिला नहीं है, बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं। वात्सल्य भाव में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के क्रम में, श्रृंखला में 10 भक्तों का उल्लेख है जो वात्सल्य रस में बहुत श्रेष्ठ हैं कृष्ण लीला में, उनमें से कुंती महारानी भी उपस्थित हैं, 7वें नंबर पे हैं। वैसे उनके पहले तो हैं माता यशोदा वृंदावन की, नंद महाराज, रोहिणी देवी, वसुदेव जी के अन्य पत्नियां, 15 पत्नियां, स्वयं वसुदेव इत्यादि। तो कुंती महारानी हैं, वात्सल्य रस में से प्रेम करती हैं, बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं। और इनकी प्रार्थनाओं को पढ़ने से जो बहुत गहरे और गुह्य गूढ़ तत्व हैं भक्ति के, वो हम समझ सकते हैं, जो बड़े बड़े PhD के विद्वान भी नहीं समझ सकते। महाभारत में एक श्लोक है, आपने अवश्य इस श्लोक को सुना होगा, नसाव ऋषि यस्य मतम न भिन्नम महाजनो येन गतः स पंथा। महाजनों के पथ, उनके पद चिन्हों में हमें चलना चाहिए। केवल मुनियों के जो मानसिक चिंतन से तरह तरह के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो गलत हैं, उनके भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, केवल तर्क के द्वारा या विभिन्न ग्रंथों को पढ़ने से जो गूढ़ तत्व हैं धर्म के, उनकी जानकारी हमें नहीं हो सकती। नसाव ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम, क्योंकि ऐसे जो मुनिगण होते हैं उनके मत जो है वो उन मतभेद बहुत होते हैं उनके बीच में। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, जो धर्म के तत्व होते हैं वो महाजनों के हृदय में होते हैं, इसलिए महाजनों के पद चिन्हों में हमें चलना चाहिए। तो महाजन कौन होते हैं? जो महान भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, शुद्ध भक्त, तो उनके हृदय में क्या है वो हम कैसे समझ सकते हैं? तो जब वो अपने प्रार्थनाओं को, अपने स्तुति करते हैं, जब वो भगवान का गुणगान करते हैं, तब उनके वचनों से हम समझ सकते हैं कि उनके हृदय में क्या बात है, कौन से गूढ़ तत्व छुपे हुए हैं उनके हृदय में। वो अपनी भक्ति भावना जब व्यक्त करते हैं उन स्तुतियों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, तब हमें पता चलता है। इसलिए ये स्तुतियां जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। चाहे ब्रह्मा जी जो कर रहे हैं स्तुति ब्रह्म संहिता, चाहे महाप्रभु की स्तुति जब वो शिक्षाष्टकम कहते हैं, या कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें भक्ति क्या चीज है, धर्म क्या चीज है, ये हमें पता चल सकता है। तो कुंती महारानी की हृदय की बातें हमें उनकी इन प्रार्थनाओं से पता चल सकती हैं। तो कुंती महारानी ऐसे तत्वों को एक के बाद एक प्रस्तुत कर रही हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम वो श्री कृष्ण को परम सत्य कह के घोषित करती है, जो कि कभी कभी बड़े बड़े विद्वानों को भी नहीं होता। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक बहुत बड़े विद्वान आए, वेदों के पुरोहित थे, सारे वेदों के मंत्रों को कंठस्थ वो बोल सकते, उनको कंठस्थ थे वो, तो बोल सकते थे बिना देखे। और ऐसे भी लोग हैं, आश्चर्यजनक उनकी स्मृति शक्ति होती है, जो लाखों श्लोक जानते हैं, ये सैकड़ों या ऐसे नहीं, हजारों नहीं, लाखों श्लोक जानते हैं बिना देखे। जैसे तेज गति पर चलने वाली रेलगाड़ी आवाज गड़गड़ गड़गड़, वैसे वो एक के बाद एक बोलने लगते हैं, जैसे गोमुख से गंगा की धारा होती, जैसे गंगा बहती है, वैसे वो एक के बाद एक श्लोक कहते रहते हैं। केशव कश्मीरी ऐसे एक पंडित थे जो महाप्रभु के पास आए थे। अद्भुत स्मृति शक्ति होती है उनकी, परंतु भक्त नहीं होने के कारण ऐसी स्मृति शक्ति का क्या लाभ। तो खैर, ऐसे कुंती महारानी भले इतनी बड़ी विद्वान नहीं थी, परंतु थी। उनके 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 वचनों से हम अवश्य जान सकते हैं कि ये स्तुति पाठ करने से ये कितना महत्व होता है, कितना कितने हमारी भक्ति के लिए वर्धक होता है। तो खैर, कुंती महारानी अब यहां बता रही है कि आप ही परम पुरुष हैं, लेकिन ये वेद पंडित जो हैं, जो प्रभुपाद जी के पास आए थे, उनको ये नहीं पता था। प्रभुपाद जी ने कहा कि आप बड़े चतुर्वेदी हैं, त्रिवेदी, द्विवेदी, वेदी नहीं, चतुर्वेदी, तो आप चारों वेदों को जानते हैं, तो अब बताइए भगवान कौन है। अब ये बड़े आश्चर्यचकित हो गए ऐसे प्रश्न। तो कहने, अब आप ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो फिर वो, लेकिन उत्तर नहीं दे पाए। तो प्रभुपाद जी ने, उनके एक शिष्य थे, एक बच्चा, उनका बच्चा था, उन बच्चे को बुलाया, बुलाकर कहा कि बताओ भगवान कौन है। तो बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, कृष्ण भगवान है। तो प्रभुपाद जी ने उस चतुर्वेदी की ओर देखकर कहा कि देखो, मैंने आपसे वही प्रश्न किया और आप कहने लगे कि आप ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो, लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने तुरंत इस बच्चे ने जवाब दे दिया, श्री कृष्ण भगवान है। तो वेदों के पंडित आप हैं या ये बच्चा है? वेदों के मंत्र जानने के बाद भी आप ये नहीं जानोगे कि श्री कृष्ण भगवान है, तो फिर क्या लाभ? श्री कृष्ण को केवल एक साधारण व्यक्ति मानोगे, या तो श्री कृष्ण थे ही नहीं, ये ऐतिहासिक व्यक्ति ही नहीं थे, यदि ऐसे आपके विचार होंगे तो फिर क्या लाभ वेद पढ़ के, भगवद गीता आदि पढ़ के। श्री कृष्ण न केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, वो परम सत्य हैं। वेदैश्च सर्वैर अहम् एव वेद्यः। तो वेदों को पढ़ने का उद्देश्य होता है कृष्ण को जानना, और वेदों को पढ़ने के बाद आप श्री कृष्ण को नहीं पहचान पा रहे हो तो आपके सारे वेद पाठ इत्यादि सब व्यर्थ है। लेकिन कुंती महारानी भली भांति इन तत्वों को जानती हैं, श्रद्धा है उनको और प्रेम है कृष्ण के प्रति, जो ज्ञान की परिपूर्णता है। तो जिस श्लोक का पाठ आज हमने किया, उसमें कुंती महारानी कह रही हैं कि हे कृष्ण, वैसे आप तो परम सत्य हो ही, परंतु आपकी जो माया शक्ति है, जो सबको ठग लेती है, सबको अज्ञान में डालती है, एक पर्दा सारे बद्ध जीवों के आंखों के सामने रख देती है, जिसके कारण आप भगवान को हम पहचान नहीं सकते हैं। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव म जानन्तो मम भूत महेश्वरम, कि जो अज्ञानी लोग होते हैं वो मुझ भगवान को पहचान नहीं सकते, मुझे एक साधारण मनुष्य समझते हैं, मेरे परम भाव को वो नहीं जानते। भगवान के परम भाव को न जानने के कारण लोग कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझकर उनकी निंदा करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने बड़ा छल किया, यहां झूठ कह दिया, वहां चोरी कर दी। चोरी तो बहुत की ना श्री कृष्ण ने, माखन चोरी किया वृंदावन में, गोपियों के वस्त्र चोरी कर लिए, जगह जगह भक्तों के हृदय चोरी तो कर ही लेते हैं, और महाभारत में तो बहुत कुछ श्री कृष्ण ने किया जो अल्पज्ञों के लिए एक भ्रमित करने वाली बात है। तो वो कृष्ण को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति समझते हैं, इसलिए निंदा करते हैं। वो कहते कि श्री कृष्ण ऐसे ऐसे किया, तो कर्म सिद्धांत के अनुसार श्री कृष्ण को नरक में रहना चाहिए। तो ऐसे सिद्धांत है, ऐसे कई लोग हैं जो ऐसे मानते हैं भारत में, परंतु वो ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण नरक में गए हैं तो सबका उद्धार करने गए हैं। श्री कृष्ण की संपत्ति है ये, श्री कृष्ण की ही सृष्टि है, उनके द्वारा सृजित है ये सब कुछ। कर्म के सिद्धांतों को भी किन्होंने बनाया है? श्री कृष्ण ही बनाया है। कर्म सिद्धांत या कोई भी नियम जो है अपने आप नहीं चलता, बनाने वाले भी कोई होते हैं। तो श्री कृष्ण ही कर्म के कानून को बनाया हुआ है। तो कुंती महारानी कहती हैं, माया जवनी का अच्छन्नम। तो ये माया का पर्दा जो है सबके आंखों के सामने है। अज्ञ अज्ञ अधोक्षजम अव्ययम। इसलिए जो अज्ञ लोग हैं, जो अज्ञानी है, वो आप अधोक्षज भगवान को नहीं पहचान सकते। किस तरह से नहीं पहचान सकते? न लक्ष्य से आपको नहीं देख सकते हैं। मूढ़ दृशा, जो मूढ़ हैं, जो अज्ञानी है, नटो नाट्य धरो यथा। जैसे एक नट जब वेश बदल के मंच पे जाता है और कोई भूमिका निभाता है, तो उस तरह जो अज्ञानी लोग होते हैं वो नहीं समझ सकते हैं ये कौन व्यक्ति है, क्योंकि उसने वेश मूछे दाढ़ी ये वो पगड़ी वगैरह पहन के जाता है, तो व्यक्ति पहचान नहीं सकता कि ये कौन है। परंतु जो उस व्यक्ति को अच्छी तरह से पहचानता है पहले से, वो जानेगा रे ये तो मेरा मित्र है। एक बार ऐसे हुआ कि भक्त लोग कोई नाटक कर रहे थे ऐसे, तो उसमें एक माताजी हैं, वो सीता देवी बनी थी और उनके पति जो हैं वो राम बने थे। तो ऐसे नाटक हो रहा था, रामायण की का कोई प्रसंग चल रहा था, तो जो और नए नए लोग थे जो आए थे वो तो पहचान नहीं पाए, वो सोचे ये तो कोई अभिनेत्री हैं, कोई अभिनेता है, कोई है। लेकिन वो माताजी का बच्चा जो वहां पे आया वो भी था, कोई उनके और रिश्ते उनको लेकर आए थे, माँ को देखा जोर से मम्मी कह के चिल्लाने लगा। अब गए सीता देवी का वो बच्चा पहुंचे, ये सीता नहीं है, मेरी माँ है। तो हरिदास ठाकुर भी भगवान से, चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं, क्योंकि जो जगन्नाथपुरी के भक्त हैं वो तो अच्छी तरह से जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण हैं, फिर भी जब भी वो कृष्ण कह के या भगवान कह के महाप्रभु का संबोधन करते थे तो महाप्रभु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो अपने कान बंद कर लेते थे, विष्णु विष्णु कहते थे। ऐसा नहीं कहना, जीव को भगवान कभी नहीं कहना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध होता है। वो एक सबक सिखाना चाहते थे सारी दुनिया को कि किसी भी व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को, जीव को भगवान नहीं मानना चाहिए। परंतु उनके भक्तों से वो कैसे छुप सकते हैं? तो इसलिए ऐसे ये एक लंबा प्रसंग है, खैर इसके लिए, इसकी चर्चा करने के लिए हमारे पास तो समय नहीं है। फिर भी वो कहने लगे, भक्त लोग कहने लगे कि प्रभु आप हमसे कैसे अपने अस्तित्व को छुपा सकते हो? सारे दुनिया के सामने भले आप ऐसे पेश आओ कि आप एक साधारण व्यक्ति हो, एक साधु हो, एक सन्यासी हो, लेकिन हमें आप धोखा नहीं दे सकते। जो सच्ची बात है वो तो हम जानते हैं, अपने आप को हमसे आप छुपा नहीं सकते हो। तो जहां प्रेम होता है वो माया का पर्दा नहीं रहता, माया का पर्दा खुल जाता है और फिर भक्त जो है वास्तव में अपने भगवान की पहचान कर सकता है। तो ये है भक्त, भक्ति का बल कि भगवान भी अपने आप को, अपना वेश बदल के रह नहीं सकते हैं। आप तो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ वृंदावन में रास लीला करते थे और करते हैं, बल्कि वर्तमान क्रिया का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये नित्य लीला है, चल रही है। तो एक बार श्री कृष्ण रास लीला को छोड़कर चले गए तो सारी गोपियां बहुत व्याकुल हो गई, चिंतित हो गई कि श्री कृष्ण हमें छोड़कर कहाँ चले गए। उस समय श्रीमती राधा रानी रास स्थली में नहीं थी, तो श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को ढूंढने के लिए गए थे। तो गोपियां ढूंढते ढूंढते आईं। श्री कृष्ण एक जगह पर उदास होकर बैठे थे और अचानक गोपियां वहां पर आईं। तो श्री कृष्ण को छुपने के लिए भी कोई समय नहीं था, तो उन्होंने अपना वेश बदल दिया। कैसे? उन्होंने दो हाथ और कर दिए, नारायण का स्वरूप धारण करके खड़े हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। और जब गोपियां आईं, तो दूर से उन्होंने पहले सोचा कि ये कृष्ण है, लेकिन पास में आके देखा, अरे ये तो भगवान नारायण है। तो हमारे सामने यदि भगवान नारायण साक्षात प्रकट हो जाते तो हम तो प्रणाम करके हम तो वहीं पर रह जाते। परंतु गोपियों ने प्रणाम तो अवश्य किया। प्रणाम करने के बाद भगवान से कहा, हे भगवान नारायण, आपके चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। अब ये बताइए कृष्ण कहाँ गए? नारायण से अधिक बात करने की इच्छा नहीं, तो वो कृष्ण को ढूंढना चाहते थे। अब भगवान ने, नारायण ने कौन से दो या चार हाथों से कहाँ इशारा किया कि वहां गए पता नहीं, हमें उसका उल्लेख तो नहीं है। परंतु खैर, गोपियां तो वहां से चली गईं। लेकिन उसके बाद श्रीमती राधा रानी आई। अब चतुर्भुज रूप धारण करके श्री कृष्ण खड़े रहना चाहते थे, लेकिन श्रीमती राधा रानी के भक्ति के कारण वो दो हाथ जो है वो पिघल गए और श्री कृष्ण का मूल द्विभुज रूप, वंशीधर रूप, वो राधा रानी के सामने प्रकट हुआ। चाहते हुए भी श्री कृष्ण उस बदले हुए वेश को धारण नहीं कर पाए, क्योंकि जहां सर्वश्रेष्ठ भक्ति है वहां श्री कृष्ण अपने अस्तित्व को छुपा के नहीं रख सकते। तो यहां जब कुंती महारानी कहती है कि माया जवनी काच्छन्नम अज्ञान दोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा, वो उनकी बात करते हैं जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, इसलिए तो वो भगवान को पहचान नहीं सकते, प्रत्यक्ष अपने आंखों के सामने देखकर भी पहचान नहीं सकते हैं। नाहम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ होयम जानाति न जानाति लोको माम अजम अव्ययम। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण गीता में दोहराते हैं। तो कुंती महारानी कहती हैं कि हाँ, आप मेरे भाई के पुत्र हो, मेरे पुत्र तुल्य हो, मेरा वात्सल्य स्नेह है तुम्हारे प्रति, लेकिन फिर भी जो सच्ची बात है तुम उसे छुपा नहीं सकते, तुम परम सत्य हो, मैं जानती हूं तुम्हें। वृंदावन का प्रेम इससे एक कदम आगे है। उनका प्रेम इतना तीव्र है कि वो भगवान है वो कभी जानते हैं, कभी कभी नहीं जानते, और जब जानते भी हैं तो उनके प्रेम में कभी शिथिलता या कमजोरी नहीं आती है। कुंती महारानी के भाव में कभी कभी एक संकोच सा आ जाता था कि हाँ, मेरे भाई का पुत्र तो है, ये मेरे लिए पुत्र के समान है, लेकिन भगवान भी है। लेकिन माता यशोदा के मन में कभी ऐसे विचार नहीं आया, डांट लगाने में पीछे हटती नहीं थी माता यशोदा। अरे अरे कृष्ण, क्या तुम कोई अनाथ बच्चे हो, सड़क में घूमने वाले कोई ऐसे लावारिस बच्चे हो, इधर उधर घूम रहे हो, कब से मैं बुला रही हूं, भोजन का समय हुआ, अभी नहीं आओगी तो देखो अब कुछ बताऊंगी सिखाऊंगी, और डर के मारे कृष्ण आ जाते थे। तो ये है शुद्ध प्रेम के लक्षण। फिर भी कुंती महारानी बताती है जन साधारण जो है दुनिया में उनकी दशा क्या होती है। कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति समझ के उनकी निंदा करते हैं, परंतु हमें कुंती महारानी ने बताए हुए तत्वों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। भक्ति मार्ग इतना सुलभ है, इतना सुंदर है कि कोई भी व्यक्ति इस पथ को स्वीकार करके कृष्ण से प्रेम करके अपना जीवन सफल बना सकता है। चाहे इस हम किसी भी जाति के क्यों न हो, किसी भी समाज के क्यों न हो, किसी भी धर्म के क्यों न हो, किसी भी देश के क्यों न हो, किसी भी आयु के क्यों न हो, किसी भी आर्थिक या सामाजिक परिस्थिति के क्यों न हो, चाहे हम पुरुष हों या स्त्री हों। कुंती महारानी स्त्री हैं, महिला हैं, फिर भी भक्ति की चरम सीमा की प्राप्ति उन्होंने कर ली है। तो कृष्ण भक्ति में ऐसे कोई बाधा नहीं है, महिलाओं के लिए हो, पुरुषों के लिए हो, सबके लिए रास्ता खुला हुआ है, परिपूर्णता कोई भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत एक प्रेरणा स्रोत है हम सबके लिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमारी कोई पात्रता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, नहीं, भगवान कृष्ण की कृपा से और उनके प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों की कृपा से हम सबके लिए ये रास्ता खुला है। तो कुंती महारानी की प्रार्थनाओं से प्रेरणा प्राप्त करके हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि सफलता हम भी प्राप्त कर सकते हैं, और बड़े उत्साह पूर्वक हमें हमारे साधन भजन के कार्यों में लगना चाहिए। श्रीमती कुंती महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन गोपाल की जय। गौर प्रेमानंदे। कोई एक या दो प्रश्न हो तो हम उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए।
हरे कृष्ण महाराज, फर्स्टली थैंक यू फॉर सच अ नाइस क्लास, इट इज लाइक अ बाम ऑन आवर हार्ट, एंड वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू कम यू नो रेगुलरली, मोर ऑफन देन व्हाट यू आर यू नो व्हाट हैज बीन इन दीज ऑल इयर्स। तो कई बार कुंती महारानी की जब हम उनका जो ये सब सुनते हैं तो बहुत सारे समस्याओं से वो गए, और एक स्त्री होने के कारण यूजुअली जो कुंती महारानी का अभी आपने बताया कि समस्या में उनकी एक अपेक्षा थी कि भगवान हमारी मदद करेंगे, तो एक दुविधा में हम लोग पड़ जाते हैं कि जब समस्या आती है तो लगता है कि भगवान से ही मदद मांग सकते, और कोई तो है नहीं, और दूसरी बार ये भी पता है कि भगवान से हम जब मदद मांग रहे हैं, हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जो हम मांग रहे हैं वो सही है कि नहीं वो भी नहीं पता है, और वो चीज़ जब तक हटती नहीं है ज़िंदगी से, वो समस्या या कोई ये चीज़, तो उसमें एक अलग से टेंशन भी रहता है। तो ऐसी अवस्था में उसे कैसे डील करें?
कुंती महारानी ने अवश्य श्री कृष्ण की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी, और इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि भक्त और कहाँ जाएंगे आश्रय के लिए। जो अभक्त होते हैं वो जगह जगह आश्रय ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, परंतु भक्त सीधे भगवान के पास ही जाते हैं। तो भगवान के पास नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे, तो इसमें कोई दोष नहीं है हमारे भक्ति में यदि हम श्री कृष्ण के पास जाएं तो। परंतु ऐसा नहीं कि हर छोटी चीज के लिए भगवान के पास जाएं। हे भगवान, अभी नया टीवी मुझे दिला दीजिए। हे भगवान, हमारे पड़ोसी ने नई गाड़ी ली है, वो संतरा मौसम्बी जो भी है, सेंट्रो जो भी मौसम्बी है, जो भी है उन्होंने लिया है, क्या आजकल के गाड़ियों के नाम भी नहीं मालूम है। हम तो फिएट एम्बेसडर के समय के, तब से हमें उसके बाद ये इनका नाम ही, इनके याद नाम हमें याद नहीं आते। उनके पास वो गाड़ी है तो हमें वो गाड़ी दिला दीजिए, नहीं। लेकिन जब कोई ऐसी एक विशेष विकट परिस्थिति आती है जीवन में, जैसे मान लीजिए कोई जान का खतरा है, या बहुत ही अधिक समस्या, बहुत विकट जटिल समस्या है, तब ऐसे हमने भगवान के चरणों में, चरण कमलों में सहायता के लिए याचना की, तो इसमें ऐसे दोष नहीं है। लेकिन ऐसे आदत नहीं बनानी चाहिए कि हर बात में भगवान के पास जाना। इसलिए जब रूप गोस्वामी ने भक्ति की परिभाषा की है भक्ति रसामृत सिंधु में, तो उन्होंने भक्ति की परिभाषा सूत्र में ये बताया है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा, कि शुद्ध भक्ति या उत्तमा भक्ति में अन्याभिलाषिता शून्यम, अभिलाषिता शून्य होना चाहिए, अन्य अभिलाषा शून्य नहीं कहा है, अन्य अभिलाषिता शून्यम अर्थात यदि कोई आपातकालीन स्थिति में जहां हमारा जान हमारी जान खतरे में है मान लीजिए, और हमने श्री कृष्ण से प्रार्थना की मुझे बचाइए, तो वो हमारे शुद्ध भक्ति में दोष नहीं है। तो यदि रूप गोस्वामी अन्य अभिलाषा शून्य कहते तो इसका मतलब है कि कभी भी हम कृष्ण को हमारे लिए पुकार नहीं सकते, लेकिन ऐसे विशेष आपातकालीन स्थिति में भगवान से याचना करना ये कोई दोष नहीं है, इसलिए अभिलाषिता का प्रयोग करते हैं रूप गोस्वामी। तो खैर ये जो भी हो, लेकिन हमें यह भी जानना चाहिए कि कुंती महारानी ने हालांकि कृष्ण के चरणों में रक्षा की याचना की, लेकिन आगे चल के उन्होंने यह भी कहा, विपदः संतो तः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम, कि आप मुझे ऐसे कठिनाई हमारे जीवन में भेजते रहिए, समस्याएं भेजते रहिए, क्योंकि जब समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं जीवन में, कष्ट बढ़ जाते हैं, तो आपके चरण कमलों का दर्शन हम करते हैं, क्योंकि तीव्रता से आपका स्मरण करते हैं, और जब आपके चरण कमलों का दर्शन होता है तो फिर अपुनर्भव दर्शनम, फिर पुनर् इस भव सागर में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, एक और प्रश्न कहीं हो तो। हाँ, हम कभी कभी डरते हैं, एक और प्रश्न कहते हैं तो कोई प्रश्न है, प्रसाद कब होगा?
हरे कृष्ण महाराज,
सब समझ जाते हैं कि प्रवचन से ऊब गए हैं थोड़े, इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ जी,
तो अभी हम जो कुंती महाराज की जो प्रार्थनाओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, और यहाँ पे बात निकली कि हम भगवान से मांगते नहीं है विशेष रूप से, जो आपने वर्णन किया, लेकिन जब हम साधना भक्ति में लगते हैं, हमारा नाम जप चालू करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे हृदय की जो स्थिति है वो हमें और अच्छे से दिखने लगती है, और जो भी अनर्थ है या कमजोरियां है ये सब ऊपर आने लगते हैं, और हम जब इस भक्ति में वातावरण में रहते हैं तो जगह जगह पे बाय एवरी मोमेंट दे कम्स ऑन द सरफेस, और उस समय हमें भगवान के सिवा और दूसरा कोई चारा नहीं होता है, तो क्या हम उन सारे तकलीफों को जो हम अंदरूनी तकलीफों को जब झेलते तो क्या उस समय हम भगवान को पुकार नहीं सकते, बार बार उनकी याचना, मदद की याचना नहीं मांग सकते?
बिल्कुल, ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए जो हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करें। जो अनर्थ हमारे हृदय में हैं, जो हमें हैरान करते हैं और जिनकी वजह से हम भक्ति में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, उनका शमन दमन करने के लिए अवश्य हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो जिस चीज से, जिस प्रार्थना से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे प्रार्थनाएं न केवल हम कर सकते हैं लेकिन हमें करना चाहिए, इससे हमारी प्रगति अच्छी तरह से होगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब इतनी अच्छी तरह से यहाँ सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे अच्छे भक्तों के बीच में हमें आने का पुनः अवसर मिलेगा। और तो यहाँ आप शिक्षाष्टकम प्रभु और अन्य भक्तों की सहायता, आप एक तो मिलजुल कर रह के बहुत अच्छा प्रचार प्रसार कृष्ण भक्ति का करिए, और सारे नासिक को भक्त बनाइए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे।
हरे कृष्णा महाराज, हमें भक्ति में सिखाया गया है कि लोभ को भी आप परिवर्तित कर सकते हैं, कृष्णाइज कर सकते हैं, तो आप आ गए हैं तो वो लोभ कृष्णाइज करने का यही तरीका है कि आप फिर से आए और बार बार आए. तो हम सभी नासिक के भक्त यही प्रार्थना करेंगे कि आप बार बार नासिक में आए. हम लोग तीन बार हरि बोल बोलकर महाराज को यही प्रार्थना करेंगे. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण.
भक्त स्वामी महाराज की
श्रील प्रभुपाद की जय.